देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्धजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं तद्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनके नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशदाने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। कल हमने एंड किया था भगवान रामचंद्र जी में, भरत वहां पे पहुंच चुके थे और चूंकि भगवान राम को पता था कि अगर ये सब्जेक्ट में तो डिस्कस होना चालू होगा उनके वनवास से संबंधित, तो उनको मौका नहीं मिलेगा कि भरत को वो लीडरशिप टिप्स दे सके, क्योंकि भरत को अगले 14 साल तक राज्य करना था। तो इसलिए भगवान रामचंद्र ने भरत को इस प्रकार से सबसे पहले टॉपिक वही चालू किया उन्होंने, कैसे अच्छे से राज्य करना चाहिए, एक आइडियल राजा का क्या कर्तव्य होता है और किस प्रकार से कोई लीडर राज्य करता है। तो वो टिप्स जो है भगवान राम के मैनेजमेंट फॉर्मूला के नाम से जाने जाते हैं। कई बुक्स में ये फॉर्मूलाज मिलते भी हैं, परंतु कहीं पे भगवान राम का नाम दिया होता है, कहीं नहीं दिया होता है। ओरिजिनली ये वाल्मीकि रामायण में दिया गया है और वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हुए कंब रामायण में भी इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप लोग, हालांकि हम जब डिस्कस करेंगे तो सब कुछ तो आप नहीं नोट कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन पेजेस की फोटो खींच के ग्रुप्स में भेज सकता हूँ, जिससे कि इवेंचुअली आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे हम जस्ट उसको डिस्कस करेंगे। भगवान रामचंद्र ने 5 मैनेजमेंट फॉर्मूला डिस्कस किए थे, बताए थे भरत को, इंस्ट्रक्ट किए थे किस किस लेवल पे लीडर को मैनेजमेंट करना चाहिए। पहला था रिस्पेक्ट मैनेजमेंट। रिस्पेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी लीडरशिप का जो फाउंडेशन है वो रिस्पेक्ट मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, कि कैसे कोई लीडर अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट करता है, अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट करता है। और जब वो अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट करता है तो सुपीरियर्स का जो हृदय से जो ब्लेसिंग मिलती है, उस ब्लेसिंग के कारण जो लीडर होता है उसके अंदर फ्रेश एनर्जी का संचार होता है। तो भगवान रामचंद्र ने भरत से एक कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा कि क्या आप गुरु वशिष्ठ को और धृति, जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु भी थे, उनको आप सम्मान से ट्रीट करते हैं कि नहीं। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि क्या आप ये श्योर कर रहे हैं कि कौशल्या और सुमित्रा दोनों खुश हैं, क्योंकि कौशल्या के पुत्र वनवास के लिए गए हैं, मतलब मैं वनवास में हूँ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण भी वनवास में हैं। क्लास चल रही। तीसरा प्रश्न पूछा कि क्या कैकेयी रानी जो है वो प्रसन्न है कि नहीं। और चौथा प्रश्न, वशिष्ठ के जो पुत्र हैं, गुरु के पुत्र जो हैं, उनको भी आप सम्मान करते हैं कि नहीं। पांचवा प्रश्न कि आप ब्राह्मण शिक्षकों और अपने मंत्रियों का सम्मान करते हैं कि नहीं। और छठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था कि अयोध्या में स्त्रियों का सम्मान होता है और उनकी देखभाल होती है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान होता है तो उस समाज में सभी अच्छे गुण आते हैं, सभी दैवीय गुण और शुभ संकेत आते हैं। और अगर स्त्री का सम्मान नहीं होता है, स्त्री का अपमान होता है या स्त्री को भोगने की इच्छा होती है तो समाज का विनाश हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट थे जिससे भगवान राम ने सिखाया किस प्रकार से एक लीडर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक तो अपने अपने सुपीरियर्स का, माता का, पिता का रिस्पेक्ट, दूसरा अपने आध्यात्मिक गुरु का रिस्पेक्ट, गुरु के पुत्र का रिस्पेक्ट, ब्राह्मणों, टीचर और मिनिस्टर्स का रिस्पेक्ट, और साथ साथ स्त्रियों का रिस्पेक्ट और स्त्रियों की देखभाल। वैदिक शास्त्रों में एक श्लोक भी आता है, यत्र नारी यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो स्त्रियों की अगर प्रॉपरली देखभाल की जाती है और स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, तो ऐसी ऐसी स्त्रियां फिर समाज समाज को अच्छे लीडर प्रदान करती है। जैसे बड़े बड़े क्षत्रिय राजा अपने माँ के द्वारा ट्रेंड किए गए, और चूंकि उनकी माँ इतनी प्योर थी तो इस कारण से इतने अच्छे अच्छे पुत्रों का जन्म हुआ। आज के समय में हम स्त्रियों की प्योरिटी को मेंटेन नहीं किया जाता है, केवल फैशन के नाम पे स्त्रियों की प्योरिटी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। विवाह के पहले स्त्री पुरुष का संबंध और ये सारी वस्तुओं से स्त्रियों का जो चेतना है और स्त्रियों का जो शरीर है वो प्रदूषित हो जाता है। उसके कारण से समाज का अगला जनरेशन जो है वो खराब होता जाता है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था भगवान रामचंद्र का। तो ये 6 प्रश्न है रिस्पेक्ट मैनेजमेंट में। इसके बाद भगवान रामचंद्र पूछते हैं डिसीजन मैनेजमेंट, कि एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो ठीक तरीके से निर्णय ले, डिसीजन ठीक तरीके से ले और बहुत सोच समझ के लिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले। तो अगर कोई लीडर ये आर्ट जानता है कि डिसीजन कैसे ठीक से लेना चाहिए, तो उसको अपने फॉलोअर्स के द्वारा एप्रिसिएशन मिलता है और रिस्पेक्ट मिलता है उसकी इस क्षमता के कारण। अर्जुन, भगवान राम ने क्या प्रश्न पूछे, क्या गाइडेंस दिए डिसीजन लेने लिए, कि बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के भी नहीं सोचना चाहिए और अकेले भी बैठ के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपके साथ कुछ कुछ ट्रस्टेड लोग होना चाहिए, क्योंकि अकेले हम डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि हम सभी पक्षों को नहीं देख पाए, और अगर बहुत सारे लोगों के साथ डिसीजन लेते हैं तो वो बाजार जैसा बन जाता है, तो कोई डिसीजन हो नहीं पाता है क्योंकि सब अपनी अपनी बात बोलते हैं। इसलिए कुछ ट्रस्टेड लोगों का ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ बैठ के हम डिसीजन ले सकें। दूसरा, हमारे डिसीजन एक बार फाइनल हो गए हैं उसके बाद उनको, जब तक वो डिसीजन का एक्शन नहीं हो जाए तब तक उसको पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है हम प्लान बनाते हैं परंतु एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, पर उसको अगर पहले से अनाउंस कर देते हैं तो लोगों को आशा हो जाती है। इसलिए अगर प्लान है तो उसको एग्जीक्यूट करने के पहले पब्लिक नहीं करना चाहिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे परंतु फाइनली कुछ नहीं कर पाते। आज के समय में ऐसे ही होता है, हम प्रॉमिस ज्यादा करते हैं डिलीवर कम करते हैं। जैसे आप देखें राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ना चालू करती हैं तो पूरा घोषणा पत्र दिखाते हैं परंतु 5 साल में उसमें से कुछ भी नहीं करते हैं। तो वो भगवान रामचंद्र बता रहे हैं कि लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई डिसीजन हम बना रहे हैं तो उसको उसको एक्ट करें, कैरी आउट करें, उसके बाद पब्लिक करें। और दूसरा, आपके जो पड़ोसी लोग, पड़ोसी राजा हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके कार्य को पूरा होने के पहले उसको नहीं समझ पाए, नहीं तो आपके कार्य को रोकने का प्रयास करेंगे। चौथा चौथा था कि हमारे जो डिसीजन है उसका मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट ध्यान में रख के डिसीजन लेना चाहिए, कि हमारा अंडरटेकिंग बहुत कम हो पर उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो। इसके बाद डिसीजन मेकिंग करते समय कभी भी देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर लीडर कभी कोई डिसीजन लेने में बहुत समय लगाता है तो फॉलोअर्स का विश्वास उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। इसलिए डिसीजन लेते समय कभी भी डिले नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कभी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी गलत व्यक्ति को हमने मार दिया या उस पर आरोप किया या उसको दंड दिया। जब तक ठीक तरीके से इंक्वायरी नहीं हो जाए तब तक किसी को दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसको गलत तरीके से, गलती से हमने जिसको दंड दिया है, उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो दंड देने वाले के वंश का विनाश कर देते हैं। इसके बाद अगला, भगवान राम ने बताया कि कभी भी पैसे के लालच में किसी चोर को दंड देने से मत चूको। कई बार जब चोर कोई पकड़ा जाता है तो वो पैसे का लालच देता है कि हम इतने पैसे देंगे मुझे छोड़ दो। भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई राजा ऐसा करता है दैट मीन्स उसका राजत्व तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपने मिनिस्टर्स को एनकरेज करो कि वो धनी और गरीब सभी के लिए समान रहे, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करें। ये हुआ रिस्पेक्ट मैनेजमेंट। तीसरा है रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट दूसरों के लिए, उसके बाद डिसीजन मैनेजमेंट, डिसीजन लेने के लिए। तीसरा है रेप्यूटेशन, लीडर को अपनी रेप्यूटेशन भी मैनेज करनी होती है जिससे कि उसकी रेपुटेशन बनी रहे, क्योंकि रेपुटेशन के आधार पे ही लोग उसका उसके द्वारा किए गए कार्यों को कार्यान्वित करेंगे। तो लीडर की रेपुटेशन अगर होती है तो उससे फॉलोअर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो भगवान राम ने क्या क्या सजेशन दिए भरत को रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए, कि कभी भी ज्यादा सोना या बहुत ज्यादा जागना नहीं चाहिए, गलत समय पे नहीं सोना चाहिए, गलत समय पे नहीं जागना चाहिए। अगर लीडर इस प्रकार से कार्य करता है कि बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा जागता है, या गलत समय पे सोता है, गलत समय पे जागता है, तो फॉलोअर्स उसको नेगेटिव तरीके से लेते हैं। दूसरा, सुबह उठने के पहले जो भी हम कार्य करने वाले हैं उनको धर्म के तरीके से सोचना चाहिए। जब हम पूर्व क्रियाएं करना चालू करते हैं उसके पहले विचार करना चाहिए कि आज दिन भर हम जो कर रहे हैं वो धार्मिक है कि नहीं। तीसरा है कि अच्छे ड्रेस पहनना चाहिए। जब कोई लीडर अच्छे से ड्रेस्ड होता है तो उससे फॉलोअर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ये साधु के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु इन जनरल लीडर के लिए आवश्यक है कि उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, जिससे फॉलोअर्स को अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है। चौथा, कि हमेशा आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके दुखों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमसे मिलने के लिए कोई आता है और हम मिलना नहीं चाहते, तो हम बहाना बनाते हैं, देखो मैं तो घर पे नहीं हूँ। और कई बार, एक बार इस प्रकार से हुआ था कि हम कुछ तो था शायद मेरे बचपन में, इस प्रकार से हुआ था कि मेरे पिताजी एक बार रेस्ट कर रहे थे तो उनसे मिलने के लिए कोई आया था। मेरी सिस्टर के साथ हुआ था, हम लोग छोटे थे, तो मेरे पिताजी ने बोला था कि उनसे जाके बोल दो कि मैं तो नहीं हूँ अभी, तो सिस्टर ने जाके बोल दिया था, पिताजी बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं। तो पिताजी के मित्र थे, वो समझ गए थे, वो आ गए अंदर, फिर पिताजी से मिलके गए। तो इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, या दूसरे सेंस में कि जब हमसे कोई बात करने के लिए आता है तो हमें इस प्रकार से नहीं उसको करना चाहिए कि हम अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जब हमसे कोई मिलने आता है तो बार बार अपनी घड़ी को देखना, बार बार दूसरी दिशा में देखना, इससे अच्छा इमेज नहीं होता है। अगर कोई अपनी अपना दुख हमें बताने के लिए आ रहा है या कोई कंप्लेन करने के लिए आता है तो उसको हमें ठीक से सुनना चाहिए, इस तरीके से कि हमारा पूरा समय उसके लिए है। इसके ऊपर सेमिनार्स भी होते हैं कि कैसे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आता है। अगर वो कुछ बताने आता है, अगर हम उसका ठीक से सुनते हैं तो उसकी आधी समस्या दूर हो जाती है। तो वो भगवान रामचंद्र बता रहे हैं कि अपने सब्जेक्ट्स का जो दुख है उसको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके बाद लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो धन दौलत या इंद्रियों के भोग में ज्यादा नहीं डूबे। ज्यादा डूबने से या गलत समय पे डूबने से सब्जेक्ट्स के हृदय में डाउट्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि कभी भी दूसरे को शेयर किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई लीडर किसी दूसरे को अपना पार्ट शेयर नहीं करता है तो उसका हृदय बहुत कठोर हो जाता है और दूसरे लोग भी ईर्ष्या करते हैं। ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत जरूरी है कि इवन हम सभी को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कई बार अगर कभी मैं देखता हूँ किसी भक्त के घर से कुछ स्वीट आता है या कुछ स्पेशल चीज आता है या कुछ आइटम्स आते हैं, और चूंकि लोग मेरे रूम में रख के जाते हैं, आश्रम के लिए देना है तब भी यहाँ पे रख के चले जाते हैं, तो मैं उसको जबरदस्ती भक्तों से बोलता हूँ कि रूम में जाके सबको दे के आइए, क्योंकि मेरे रूम में रखा रहेगा तो लोगों को लगेगा कि मैंने खत्म कर दिया। भले ही हम नहीं खाएं, दूसरों को दें, परंतु तो लोगों को डाउट होता है उस, इसलिए हमेशा शेयर करके खाना चाहिए जब भी हम कोई चीज लेते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैसिलिटी उपयोग कर रहे हैं जो कि दूसरे के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा हो सकता है कि ये उस फैसिलिटी को क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि किसी भी भक्त के लिए, किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए या किसी भी लीडर के लिए, कि अननेसेसरी हम कोई भी स्पेशल स्पेशल प्रिविलेज नहीं लें। हो सकता है कि हमारे पोस्ट के आधार पे या हमारी सीनियोरिटी के आधार पे हमें स्पेशल कुछ स्टेटस दिया जाए, परंतु उसको स्वीकार नहीं करना अच्छा है। स्वीकार करने से हमारे साथ के जो लोग हैं उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज एक पुस्तक में, उनकी पुस्तक में लिखे हैं कि जब वो बचपन में थे तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी क्लास में, शायद 6वीं 7वीं क्लास में होंगे वो, तो उनकी क्लास में एक उनका मित्र था। वो मित्र एक होटल में काम करता था, एक रेस्टोरेंट में काम करता था, और महाराज के माता पिता तो जॉब करते थे। तो कभी कभी एक बार ऐसा हुआ कि उनके माता पिता उनको कार से लेके रात में भोजन के लिए गए, उसी रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे उनका मित्र काम करता था। तो जब उन्होंने देखा तो उनको सहन नहीं हुआ। महाराज बताते हैं, बचपन से ही मेरा ऐसा नेचर था कि मुझे एक्स्ट्रा फैसिलिटी एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं लगता था। तो जब उन्होंने देखा कि वो वही मित्र उनको भोजन सर्व करने के लिए आ रहा है, तो महाराज दौड़ के भाग गए और कार के अंदर जाके छुप गए। उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बैठ के खा रहा हूँ और वो मुझे सर्व कर रहा है, और उसको भी ऐसा लगेगा कि जैसे वो गरीब है जबकि हम दोनों मित्र हैं। तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए हमें कि कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी हम एक्सेप्ट नहीं करें। वो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैसिलिटी उपयोग करने से हमें थोड़ा लगता है कि हम स्पेशल हैं, और दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग इनको क्यों इस प्रकार से मिल रहा है, ईर्ष्या की भावना आ सकती है। तो वो भगवान रामचंद्र यहाँ पे भरत को बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि हमेशा ब्राह्मणों के क्रोध से बचना चाहिए। और उसके बाद बताया कि ये श्योर करना चाहिए कि आपके जो नौकर हैं, जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो आपके लिए आपको अपमान भी नहीं करें और आप उनको इतना डराएं भी नहीं कि आपको देखते ही साथ वो भाग गए। तो उनसे इतना ज्यादा घुल मिल भी नहीं जाना चाहिए कि वो आपको अपने आप के बराबर समझ के आपका अपमान करने लगे, और साथ साथ उनको इतना डराना भी नहीं चाहिए कि आप उनके सामने जाएं वो भाग जाएं। दोनों एक्सट्रीम है, एक तो उनके साथ घुल मिल जाना, इतना घुल मिल जाना कि एकदम बराबरी जैसा लगने लगे, और दूसरा उनको इतना ज्यादा डिसिप्लिन करना कि वो आपको देख के भागने लगे। ये दोनों अच्छा नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि डिसरेस्पेक्ट और फियर, ये दो एक्सट्रीम है। ये दो एक्सट्रीम अगर होते हैं तो कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकता है, और वो सब्जेक्ट जो फॉलोअर है वो लीडर को सम्मान नहीं कर पाता है। तो ये था रेपुटेशन मैनेजमेंट। उसके बाद आता है टीम मैनेजमेंट, किस प्रकार से एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि टीम जो भी कार्य करें टीम के द्वारा करें, जिससे कि सक्सेस आसानी से मिल सकती है। इसके लिए भगवान रामचंद्र ने क्या क्या निर्देश दिए कि एक बुद्धिमान आदमी हजारों मूर्ख व्यक्तियों से अच्छा है। एक अच्छा मिनिस्टर अगर हमारे पास है तो राज्य को सौभाग्यशाली बना सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कि अगर हम मिनिस्टर्स को या किसी को कोई टास्क देते हैं तो उनकी बुद्धि के आधार पे, उनकी क्षमता के आधार पे, उनके स्किल के आधार पे, उनके स्टेटस के आधार पे वो टास्क देना चाहिए। और चारों तरफ ऐसे मिनिस्टर्स होना चाहिए, ऐसे सहायक होना चाहिए जो कि करप्ट नहीं हो, जिनका जीवन इंटेग्रिटी पे आधारित है, और जो ऐसे परिवार से आए हैं जहाँ पे वैदिक कल्चर प्रयोग किया जाता है, वैदिक कल्चर सिखाया जाता है। और उसके बाद वो बताते हैं कि जो भी आर्मी में जो भी लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। आर्मी को उनकी सैलरी एकदम समय पे देना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज को सैलरी और प्रोविजन समय पे नहीं दिया जाता है तो एम्प्लॉयज करप्ट हो जाते हैं और धोखा देने लगते हैं और रिश्वत लेने लगते हैं, इसलिए उनकी सैलरी और उनके वेजेस हमेशा टाइम पे मिलना चाहिए। और उसके बाद बताया कि तीन दूतों के द्वारा, ऐसे तीन दूतों को छांटो, स्पाइस, तीन स्पाइस को छांटो जो कि एक दूसरे को नहीं जानते हो, और उनके द्वारा अपने सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की न्यूज पता करते रहो, और एक दूत पे ट्रस्ट मत करो, तीनों से सेम चीज पूछो अलग अलग, और ऐसा होना चाहिए कि वो तीनों एक दूसरे को नहीं जानते हो। अभी किस किस के ऊपर हमें गुप्तचर नहीं रखना चाहिए? अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, और अपने बेटे के ऊपर, प्रिंस राजकुमार के ऊपर, उनके ऊपर हमें मिनिस्टर्स नहीं रखना चाहिए, मतलब उनको गुप्तचर नहीं रखना चाहिए। ये संबंध ऐसे हैं कि अगर गुप्तचर रखेंगे तो संबंध टूट सकता है। तो मिनिस्टर्स, गुरु और राजकुमार के ऊपर गुप्तचर नहीं रखना चाहिए। हाँ, उनके क्रियाकलापों को हमें ध्यान देना चाहिए। और अपने घर में किस किस को नहीं रखना चाहिए? ऐसा फिजिशियन नहीं घर में रखना चाहिए जो कि बीमारी को बढ़ा दे, ऐसा नौकर घर में नहीं रखना चाहिए जो कि दुख घर में लेके आए, और ऐसे वॉरियर को घर में जगह नहीं देना चाहिए जो कि बहुत शक्तिशाली है और राजा बनना चाहता है। ऐसे लोगों को अगर घर में जगह देंगे तो हमारे विनाश का कारण हो सकता है। इसके बाद लास्ट डिस्कशन आता है कैरेक्टर मैनेजमेंट। तो भगवान रामचंद्र बताते हैं किस प्रकार से लीडर को अपने कैरेक्टर को मैनेज करना चाहिए। 14 प्रकार के पाप कर्म होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई लीडर इन 14 प्रकार के पाप कर्मों को अवॉइड कर सकता है तो अपने कैरेक्टर को मैनेज कर सकता है। पहला, भौतिक संसार को कभी भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए जितना आध्यात्मिक संसार को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दूसरा, लीडर को कभी भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, लीडर को कभी भी टालना नहीं चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन। चौथा, जो भी धार्मिक लोग हैं उनका सम्मान और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, कभी भी उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पांचवा, अगर नशा हम लेते हैं, नशे का ज्यादा प्रयोग करना वर्जित है, और नशे का ज्यादा प्रयोग करने से अपने कार्यों में कमी नहीं आनी चाहिए। छठवां है कि इंद्रिय भोग के लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। सातवां, डिसीजन मेकिंग में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि माई वे इज द हाईवे, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, ऑटोक्रेसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर अगर सारे डिसीजन खुद ही लेता है तो फिर फॉलोअर्स उसको फॉलो नहीं करते हैं बहुत समय तक, इसलिए मिनिस्टर्स की मदद से और गुरु की मदद से डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद अगला है कि अगर कोई डिसीजन ऑलरेडी हो गया है तो उसको एक्टिवेट करना चाहिए, बहुत देर तक उसको कागज पे नहीं रहना चाहिए, उसको एक्शन में लेके आना चाहिए। उसके बाद अगला है, लीडर को कभी भी बेईमान नहीं होना चाहिए, और कोई गुप्त सूचना है तो उसको पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, और अपनी माँ पिता गुरु और बुद्धिमान लोगों के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर उन्होंने गलती की है तब भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए जिनका कोई ओपिनियन कोई अच्छा नहीं है, धर्म के आधार पर जो नहीं बोलते हैं उनके साथ डिस्कशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और शत्रु को चारों दिशाओं से अटैक नहीं करना चाहिए, एक दिशा से अटैक करना चाहिए। उसके बाद जो खराब लोग हैं उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, अगर ये 14 प्रकार के कार्य करते हैं तो लीडर को पाप नहीं लगता है। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने 5 कैटेगरी में उनको शिक्षाएं दी। पहला था रिस्पेक्ट मैनेजमेंट, उस सेकंड था डिसीजन मैनेजमेंट, उसके बाद रेपुटेशन मैनेजमेंट, उसके बाद टीम मैनेजमेंट, उसके बाद कैरेक्टर मैनेजमेंट। इतना डिस्कशन करने के बाद भगवान रामचंद्र फिर शांत हो गए, क्योंकि अभी उनको पता था कि अभी जो सब्जेक्ट मैटर खुलने वाला है वो बहुत इमोशनल सब्जेक्ट मैटर है, और इमोशनल सब्जेक्ट मैटर में ये इंस्ट्रक्शंस देना इम्पॉसिबल था, इसलिए उन्होंने मैटर चालू होने के पहले ये इंस्ट्रक्शन दिए। उसके बाद फिर भगवान रामचंद्र पूछते हैं कि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप इस प्रकार से वनवासी ड्रेस में यहाँ क्यों आए हैं, और हमारे पिता कहाँ हैं, और पिता ने आपको किस प्रकार से ये ड्रेस पहनने दिया। और अभी भगवान रामचंद्र ने बोल के शांत हो गए सुनने के लिए कि अभी भरत क्या बोलना चाहते हैं, और भरत को भी पता चला कि अभी 3 और हृदय को तोड़ने का समय आ गया है। तो भरत ने बोला कि ये कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, और आप कौन से राजा की बात कर रहे हैं, और कौन से पिता कौन से पुत्र की बात कर रहे हैं, राजा तो चले गए और राज्य ऑलरेडी विनाश की तरफ जा रहा है, हमारे पिता इस संसार को छोड़ के चले गए और हम सभी अभी अनाथ हो चुके हैं। इस प्रकार से जब भरत ने बोलना चालू किया, भरत अभी और सुना रहे हैं कि हमारे पिता मृत्यु के समय आपको याद कर रहे थे, ऐसे पुत्र को याद कर रहे थे जिनको वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, और ऐसी पत्नी को कर्ष कर रहे थे जिनको वो सबसे ज्यादा घृणा करते थे, ऐसा करते हुए हमारे पिताजी उच्च लोकों में चले गए, और उनके उनके जीवन में उनसे केवल एक ही गलती हुई, कुछ समय के लिए उनका इनअटेंशन हुआ और उन्होंने एक स्त्री की बात को मान के अपने जीवन में जितना रेपुटेशन कमाया था सारा रेपुटेशन उन्होंने दांव पे लगा दिया। और वो बताते हैं, चूंकि मैं इसके पीछे कारण हूँ, क्योंकि मैं ही व्यक्ति हूँ जिसके कारण वो राज्य कैकेयी ने प्राप्त करने का प्रयास किया, इसलिए ये सारा पाप मेरे ऊपर आएगा, मुझे केवल तभी बचाया जा सकता है जब आप अयोध्या वापस चलें और राज्य को स्वीकार करें, अगर आप ये कार्य करेंगे तो मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, मेरी माँ को क्षमा मिलेगी, और ये सारे अयोध्या वासियों को बहुत प्रेम मिलेगा, और अयोध्या जो पाप की नगरी के समान बन चुकी है उसको फिर से पुण्य नगरी में बदल दिया जाएगा, और मैं इसीलिए अयोध्या से आपको ये सब बताने के लिए आया हूँ, कृपया मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद बोलते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैंने अपने पिता को जो अंतिम तर्पण जो कार्य किया है वो पिता ने स्वीकार भी किया है कि नहीं, क्योंकि मेरे कारण से उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पिता को तर्पण करिए, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे थे मृत्यु के समय, इसलिए आप अगर तर्पण करेंगे तो उनके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये इतना बोलने के बाद भगवान रामचंद्र जो अभी तक अपने आप को नियंत्रित किए हुए थे, एकाएक उनकी आंखों से एकदम, ऐसे बताते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकलते थे नदी के समान, उस प्रकार से भगवान रामचंद्र की आंखों से आंसू आने लगे, और पिताजी को याद करते करते एकाएक वो दुख में गिर गए, अनकॉन्सियस हो गए। सीता माता एकदम दौड़ के आती हैं, उनके चेहरे पे थोड़ा जल छिड़कती हैं। भगवान रामचंद्र धीरे धीरे आंख खोलते हुए बोलते हैं कि अभी तो अयोध्या जाने के सारे कारणों को खत्म हो चुके हैं, अभी अभी मैं अयोध्या जाके क्या करूंगा। अभी अयोध्या ने अपना एसेंस खो दिया है, क्योंकि राजा के बिना वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं। मैं तो कितना दुर्भाग्य हूँ कि मैं अपना जो जीवन भर का जो ग्रेटिट्यूड था वो कभी उनको ऑफर ही नहीं कर पाया। और भरत, आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप उनको अंतिम अंतिम क्रियाएं आप उनके लिए कर चुके हैं। और फिर भगवान रामचंद्र तीनों, मतलब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने जाके दशरथ के लिए पिंडदान कर किया। पिंडदान करने के लिए उन्होंने आटा और कुछ हर्ब्स को मिलाया और उसको पिंडदान करके मंदाकिनी नदी के बगल में करके वापस लौटे। और जब तक ये वापस आ रहे थे, उसी समय पीछे से वशिष्ठ मुनि और तीनों रानियां आती हैं। जब कौशल्या देवी देखती हैं कि दशरथ, जो कि पूरे संसार के राजा थे, उनका पिंडदान इतना इतनी गरीबी की अवस्था में किया गया है, केवल आटे और कुछ जड़ी बूटियों को मिला के उनका पिंडदान किया है, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि पूरे संसार के राजा को इतनी गरीब ऑफरिंग दी गई है, कैसे कोई भाग्य इतना कठोर हो सकता है इक्ष्वाकु वंश के ऊपर। मेरे मेरे पुत्र को इतनी कठिनाइयां क्यों हो रही है, और मेरे पति को इतनी इंसल्ट क्यों हुई। इस तरह से बोलते बोलते कौशल्या रोते हुए वहां पे आती हैं, और सुमित्रा उनको समझाते हैं। जब वो लोग पास में आते हैं, तो वो समय भगवान राम और भरत के बीच का वार्तालाप सुनते हैं। और यहां से फिर दोनों भाइयों के बीच का डिस्कशन चालू होता है, जो कि आई होप भी हम आज कंप्लीट कर पाएंगे उसको। आधा घंटा है अभी हमारे पास। तो भगवान रामचंद्र भरत से वार्तालाप कर रहे हैं कि भरत, आप हमारे पिता को ब्लेम नहीं कर सकते, जो मेरे साथ हुआ आपके साथ हुआ उसके लिए हमारे पिता को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, और ना तो आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, ना आप कैकई को ब्लेम कर सकते हैं। ये केवल भाग्य है, हम सभी उसके पपेट के समान हैं, और दैव देवताओं के हाथ में, भगवान के हाथ में सब कुछ है। जहां तक हमारे पिता की मृत्यु का सवाल है, वो तो समय के द्वारा है, कालकृत समय के द्वारा वो किया गया है, इसलिए उसके लिए हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस डेस्टिनी को स्वीकार करें, अपने अपने कार्य करें। और तुम्हें अपनी माँ को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, और अपने पिता को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। माँ और पिता तो पुत्र पुत्र के लिए इस प्रकार से होते हैं कि चाहे वो जो चाहे वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इसलिए पुत्र को कभी भी अपने माता पिता के ऑर्डर्स को एनालाइज नहीं करना चाहिए, माता पिता को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। अभी आप अपने एक्सपेक्टेशन को अलाइन करिए और राज्य स्वीकार करिए। और मुझे ये मत बोलिए कि मैं अयोध्या जाके राज्य स्वीकार करूं, क्योंकि मैं इस पाप को नहीं कर सकता। तो जब राम ने इस प्रकार से शब्द सुने, राम के शब्द इस प्रकार से सुने, तो भरत समझ गए कि ये फाइट आसान नहीं है। भरत अपने आप को इमोशनली तैयार करने लगे कि कैसे ये फाइट करें। तो हालांकि उन्होंने भगवान राम के इंस्ट्रक्शन को तुरंत नहीं माना, परंतु तुरंत उन्होंने झुक के भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। तुरंत वहां पे झुके और राम को प्रणाम करते हैं। जैसे ही भरत ने राम को प्रणाम किया, तो राम ने पीछे से देखा कि वशिष्ठ मुनि और तीनों रानी आ रहे हैं। अभी तक भरत सामने खड़े थे, तो पीछे से कौन आ रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो वशिष्ठ मुनि और तीनों रानियां जब राम ने देखे, तो तुरंत उन्होंने प्रणाम किए। वशिष्ठ मुनि को सबसे ऊंचे आसन पे बैठाया गया, और धीरे धीरे पूरी की पूरी आर्मी वहां पे आ गई थी पहाड़ के ऊपर। और पूरी रात सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे, पूरी रात कोई सोया नहीं। दूसरे दिन सुबह जब होता है, सभी लोग अपने सुबह का प्रातःकालीन कार्य करके फिर से सभी लोग वापस आ जाते हैं बातचीत कंटिन्यू करने के लिए। अभी भरत के पक्ष के लोग तैयार थे, जो इमोशनल फाइट होने वाली थी उसके लिए तैयार थे, और जंगल में रहने वाले जो थे, राम सीता और लक्ष्मण, ये तैयार थे कि हमें जाना नहीं है। वो प्रयास कर रहे थे कि इनको लेके जाना है, ये प्रयास कर रहे थे कि हमें जाना नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। और फाइट के शुरू से ही, कन्वर्सेशन के शुरू से ही, भगवान राम बहुत गंभीर थे और भरत बहुत लॉजिकल थे। दोनों पिछले दिन समझ गए थे कि किस प्रकार से ये आगे जाने वाला है। और भरत समझ गए थे कि राम के साथ सेंटिमेंटल होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि राम के आर्ग्यूमेंट ऐसे होते हैं कि किसी भी सेंटिमेंट को तोड़ सकते हैं। इसलिए भरत ने सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बना के रखे थे और भरत ने बोलना चालू किया। इस प्रकार से दोनों के बीच में प्रेम की लड़ाई चालू होती है, टग ऑफ वॉर नहीं, टग ऑफ लव, प्रेम की लड़ाई चालू होती है। भरत बोलना चालू करते हैं कि हे मेरे भाई, मुझे बताइए कौन से धर्म के कोड के आधार पे कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है उस पाप के लिए जो पाप उसके एब्सेंस में किया गया। जब वो व्यक्ति उपस्थित नहीं था उस समय अगर कोई पाप किया गया हो तो व्यक्ति क्यों किस धर्म के आधार पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अयोध्या में जो भी गलत हुआ वो तो मैं जब नहीं था उस समय हुआ, तो क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि जब मैं वापस आऊं तो उसको मैं सही करूं। और मेरी माँ ने राज्य प्राप्त किया पिता से और मेरी माँ ने वो राज्य मुझे दे दिया, तो अभी उस राज्य को मैं किसी को भी दूं उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो धर्म का ही कार्य है। मैं फ्री हूँ उस राज्य को किसी को भी देने के लिए, और अगर ये राज्य वाकई मेरा है और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ये राज्य आपको देना चाहता हूँ, तो इसमें क्या गलती है और आपको क्यों इसको मना करना चाहिए। ये तो कोई पाप नहीं है, ये तो लीगल प्रोविजन है, मेरी माँ ने मुझे दिया, अभी मैं आपको दे रहा हूं तो आपको स्वीकार करना चाहिए। और मेरे अनुपस्थिति में जो भी गलत हुआ वो सही करने का अधिकार मुझे है, तो ये तो धर्म का ही कार्य है। और फिर बताते हैं कि अयोध्या एक ऐसे डैम के समान है जिसको बार बार पानी के लहरों ने तोड़ने का प्रयास किया है। अगर अभी अभी भी आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे तो ये डैम टूट जाएगा और पूरा अयोध्या सिटी तबाह हो जाएगा। जिस प्रकार से कोई गधा घोड़े को नहीं मैच कर सकता है और जिस प्रकार से कोई सिंपल चिड़िया गरुड़ को मैच नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से मेरे जैसा व्यक्ति आपके जैसे व्यक्ति की मैच्योरिटी को मैच नहीं कर सकता है। अयोध्या का जो राज्य है वो मुझे नहीं चाहता है, अयोध्या के राज्य को चलाने के लिए आपकी आवश्यकता है और हम सभी देखना चाहते हैं कि आप उस राज्य पे बैठे। जैसे भरत ने इस प्रकार से बोल के बात बंद की तो जितने हजारों लोग थे सबने जोर जोर से बोलना चालू किया, हाँ हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। ये सभी लोग एक्चुअली भरत को इमोशनली सपोर्ट करना करने के लिए ही आए थे। और भगवान रामचंद्र को ये पता था कि ये सब इमोशनली हमें इमोशनली प्रयास करेंगे मुझे नीचे ले जाने का, तो भगवान रामचंद्र ने शांति से सुना उनको और शांति से फिर, चूंकि भगवान रामचंद्र बहुत ग्रेव थे पूरे, वो बताते हैं भरत को कि भरत तुम इस प्रकार से बोल रहे हो जैसे कि जो भी होता है वो केवल हमारे एवेल्युएशन से होता है। वास्तविकता में तो ऐसा है कि मनुष्य केवल भाग्य के पपेट के जैसे है, जैसे कोई पपेट का कोई फ्रीडम नहीं होता है, वो उतना ही घूम सकता है जितना उसको उसकी स्ट्रिंग्स घुमाती है। इसी तरह से मनुष्य का भी कोई फ्रीडम नहीं होता, इतना ही फ्रीडम होता है जितना कि भाग्य के द्वारा उससे क्रियाएं होती है। मनुष्य केवल यही चूज कर सकता है कि जब भगवान का कोई डिसीजन आता है उस पर रिएक्ट कैसे करना है, उसके साथ क्या होगा ये उसको नहीं पता होता है, परंतु रिएक्शन उसके हाथ में होता है। और इस प्रकार से भगवान राम वैराग्य की शिक्षा देते हैं, भरत को बताते हैं कि संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, समय के साथ साथ सब भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें इमोशंस को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना चाहिए, सिद्धांत को कार्य करना चाहिए। और आगे आगे गीता जैसे उपदेश देते हैं कि जैसे जवानी आती है बुढ़ापा आता है, फिर समझाते हैं कि 14 साल तो तुरंत निकल जाएंगे इसलिए कोई समस्या नहीं है, और धर्म के अलावा इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है। जिस प्रकार से कोई पत्ती के ऊपर जो ओस की बूंद होती है वो हवा के द्वारा नीचे गिर जाती है, उसी प्रकार से समय इस संसार की सारी टेम्परेरी चीजों को खत्म कर देता है। इसलिए भरत इस संसार की टेम्परेरी चीजों के पीछे मत भागो, परमानेंट चीजों को स्वीकार करो और धर्म के सिद्धांत को पालन करो और डेस्टिनी के द्वारा हमारे रास्ते में जो आया है वो स्वीकार करो। अभी भरत तुरंत आंसर देते हैं कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट के पीछे अटैच होना चाहिए, टेम्परेरी से अटैच नहीं होना चाहिए, परंतु क्या यह सत्य नहीं है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के पास आ जाता है तो वो व्यक्ति विबिल्डर्ड हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, वो कई बार गलत गलत कार्य करता है। और हमारे पिता तो मृत्यु के पास थे जब उन्होंने ये गलती की, और साथ साथ मृत्यु के पास होने के साथ साथ वो एक ऐसी स्त्री से आसक्त भी थे जिसने उनसे उनका ये एक्सप्लॉइट किया, उनके द्वारा ये गलत डिसीजन लिया। तो भरत बताते हैं कि मुझे पता है कि ये डिसीजन फॉल्टी था और हमारे पिता ने मरते समय ये डिसीजन लिया इसलिए उनकी ये मिस्टेक थी, तो क्या बच्चों का ये कर्तव्य नहीं है कि उनके पिता ने जो गलती की है उस गलती को वो सही करें। इसलिए मैं अपने पिता ने जो मृत्यु के समय उन्होंने जो मिस्टेक की थी, उस मिस्टेक को मैं दूर करना चाहता हूँ, और हर पुत्र का ये कर्तव्य है। मैं तो ये बोलता हूँ, आपका भी ये कर्तव्य है, आपको भी इस प्रकार से करना चाहिए। क्या आप अपने अपने पिता को बचाना नहीं चाहते हैं? अगर हम अपने पिता को नहीं बचाएंगे, उनकी मिस्टेक को सही नहीं करेंगे, हम दोनों भाई मिलके, तो हमारे पिता नरक में जाएंगे स्वर्ग के जाने की बजाय। तो भरत के आर्गुमेंट बहुत लॉजिकल थे। तो बताए कि राम केवल मेरी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमारे पिता दशरथ को नरक में जाने से बचाइए। परंतु ये सब सुन के भगवान रामचंद्र स्माइल करते हैं, और भरत को समझ में नहीं आता है कि अभी एकाएक भगवान रामचंद्र ने स्माइल करना क्यों चालू किया। तो भगवान रामचंद्र फिर बोलते हैं कि एक्चुअली वास्तविकता में ऐसा नहीं है, महाराज ने जो डिसीजन लिया था ये मृत्यु के समय नहीं लिया था, उस समय डिसीजन लिया था जब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे और जब वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं थे। ये डिसीजन महाराज दशरथ ने उस समय लिया था जब हमारा और आपका जन्म भी नहीं हुआ था। इस तरह से जब भगवान रामचंद्र बताते हैं तो भरत को आश्चर्य हो जाता है। और भरत के अलावा, और अयोध्या में दशरथ के अलावा केवल एक ही व्यक्ति थे जो इस घटना को जानते थे, सुमंत। क्योंकि इस घटना का डिस्क्रिप्शन भगवान नहीं, महाराज दशरथ ने और किसी से किया नहीं था कभी भी। भगवान राम और भरत के जन्म के पहले की घटना है, जब दशरथ की शादी कैकेयी से होने वाली थी। तो उस शादी का प्रस्ताव ये था, दशरथ ने उनके पिता के साथ प्रस्ताव रखा था कि कैकेयी के पुत्र को राजा बनाएंगे, कैकेयी का पुत्र राजा बनेगा। इसी प्रस्ताव के साथ उनकी मैरिज फिक्स हुई थी, दशरथ और कैकेयी की। और ये बात दशरथ ने कभी किसी को नहीं बताई, केवल दशरथ को पता थी, कैकेयी को पता थी, कैकेयी को भी नहीं पता थी, कैकेयी के पिता को पता थी और सुमंत को पता थी। तो जब सुमंत ने सुना कि ये डिस्कशन किस तरफ जा रहा है, तो सुमंत को लगा कि भगवान राम को ये सब कैसे पता है, और वो चाहते थे कि ये कन्वर्सेशन इस तरफ नहीं जाए। पर जब भगवान राम ने पूरी सच्चाई खोली, उसके बाद सुमंत को पता चल गया कि अभी राम वापस नहीं आएंगे। और ये शर्त तो उन्होंने उस समय क्यों रखी थी, क्योंकि उस समय तो दशरथ के कोई पुत्र थे नहीं। नेचुरली जब कैकेयी से विवाह करना चाहते थे, उस समय तो कोई और पुत्र नहीं था। तो उन्होंने ये संधि स्वीकार कर ली थी कि कैकेयी का जो पुत्र होगा उसको हम राजा बना देंगे। परंतु बाद में सिचुएशन बदल गई और रामचंद्र का जन्म पहले हो गया। इसीलिए हम देखते हैं पहले डिस्क्रिप्शन में कि इंटेंशनली महाराज दशरथ ने कैकेयी के पिता को इन्विटेशन नहीं भेजा था राम के राज्याभिषेक का। भरत को भी नहीं बताया गया था कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, इसी कारण से, क्योंकि दशरथ को लग रहा था कि अगर ये न्यूज उनके पास पहुंचेगा तो ये पॉइंट आ सकता है, इसलिए वो जल्दबाजी में राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। उनको अंदर अंदर लग भी रहा था कि राज्याभिषेक में कुछ ना कुछ समस्या आएगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये प्रॉमिस किया था। तो ये बात जब भगवान रामचंद्र ने भरत को बताई, कैकेयी को भी शौक हुआ। कैकेयी के लिए भी एक नई नई न्यूज थी, क्योंकि उनको भी नहीं पता था, ना तो मंथरा मंथरा को पता था। और सुमंत को सबसे ज्यादा शौक जो था, साथ साथ सुमंत ने चूंकि इस सीक्रेट को सबसे बचा के रखा था, आज पहली बार भगवान राम के मुख से उन्होंने ये सीक्रेट सुना। और सुमंत को लगा कि कैसे राम इसको जानते हैं, ये सीक्रेट कैसे जानते हैं। और सुमंत समझ गए कि दुनिया के जितने भी डीप से डीप सीक्रेट हैं, कोई भी सीक्रेट भगवान राम से छुपा नहीं है। रामायण में एक्चुअली दो लोगों को अप्रमेय शब्द से उपयोग किया गया है, एक तो भरत को बताया गया है, एक भगवान रामचंद्र को। अप्रमेय का मतलब यही होता है जो जिसके हृदय में कितनी डीपनेस है उसकी कोई सीमा नहीं है, संसार के सारे सीक्रेट उसके हृदय में होते हैं। तो इसके बाद फिर भगवान रामचंद्र ने बोलना चालू किया कि वास्तविकता में पुत्र का कर्तव्य होता है, बच्चों का कर्तव्य होता है कि अपने पिता को नरक के उससे बचाएं। एक पुत्र को पुत्र तभी बोला जाता है जब वो अपने पिता को पूत नाम के नरक से जाने से बचाता है। इसलिए हमारे पिता का जो प्रॉमिस है उसको आप पूरा करिए अयोध्या का राजा बन के, और मैं अपना पार्ट करूंगा अयोध्या से दूर रह के उसी प्रॉमिस को पूरा करूंगा। और हमारा पिता का डिसीजन पूरा बैलेंस्ड है, उन्होंने आपको मनुष्यों का राज्य दिया है और मुझे जानवरों का राज्य दिया है। आपके लिए शहर रहने के लिए है, मेरे लिए जंगल रहने के लिए है। आपके सिर के ऊपर सफेद सफेद अम्ब्रेला रहेगा और मेरे सिर के ऊपर ग्रीन अम्ब्रेला रहेगा। और सुमित्रा माँ के एक एक पुत्र हमारे साथ में रहेंगे, एक पुत्र शत्रुघ्न आपके साथ रहेंगे, एक पुत्र लक्ष्मण मेरे साथ रहेंगे। इसलिए मुझे तो कोई कोई ऐसा इम्पार्शियलिटी नहीं दिखती है अपने पिता के डिवीजन में। इसके बाद भगवान रामचंद्र फिर बताना चालू करते हैं कि सफलता के चार चार द्वार होते हैं, शांति, आत्मविचार, संतोष और सत्संग। और जब हम कोई इच्छाएं करते हैं, भौतिक इच्छाएं करते हैं, तो उससे शांति नामक दो दरवाजा बंद हो जाता है। जब हम अज्ञानी होते हैं तो उससे आत्मनिरीक्षण का दरवाजा बंद हो जाता है। जब हम भौतिक चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं तो उससे संतुष्टि का दरवाजा बंद हो जाता है। और जब हम गलत रास्ते में जाते हैं तो उससे अच्छे सत्संग का दरवाजा बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने आत्मनिरीक्षण करें और जो भी आपके पास आया उसको स्वीकार करें और हमारे जीवन को इस प्रकार से आगे बढ़ने दें। अगर हम इस मूड में रहेंगे तो चाहे हम जंगल में रहें चाहे अयोध्या में रहें, कोई अंतर नहीं होता है। और भरत ने तुरंत आंसर तैयार करके रखा था। तुरंत उन्होंने बोला कि आपने ये जो चार क्वालिटीज बताई हैं ये तो एक साधु के लिए है। आप हो सकता है एक साधु के ड्रेस में हो, परंतु आप तो क्षत्रिय का कर्तव्य कैसे छोड़ेंगे? वर्णाश्रम के आधार पर तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है राज्य करना। आप तो यहाँ वानप्रस्थ जैसे रह रहे हैं। धन को छोड़ना और जंगल में रहना तो वानप्रस्थ के लिए है। तो कौन सा ऐसा शास्त्र है जो बोलता है क्षत्रिय को जवानी में अपने कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए? क्षत्रिय को तो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आप वो नहीं करके वर्णाश्रम को कैसे पालन करेंगे? अगर आप अयोध्या को रूल नहीं करेंगे तो इतने सारे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और आप भी वर्णाश्रम को पालन नहीं करेंगे, पाप करेंगे। तो भगवान रामचंद्र ने बोला कि आपसे किसने बोला कि मैं क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करूंगा? मैं तो यहाँ रहूंगा, यहाँ के जो वनवासी लोग रहते हैं, जो ऋषि रहते हैं, उनकी सुरक्षा करूंगा। जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर सुरक्षा करूंगा। मैं तो पहले ही बताया कि मैं जंगल का राजा रहूंगा और आप अयोध्या के राजा रहे। तो अभी भरत के पास और कुछ बोलने के लिए नहीं था। भरत ने फिर बोला कि अगर आप अभी भी जंगल का जीवन छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हम मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जंगल में ही रहिए और अयोध्या का राज्य करिए। हम यहाँ पे आपके राज्याभिषेक का सारा सामान लेके आए हैं। सभी लोग यहाँ पे आपका राज्याभिषेक करेंगे। एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं मानना चाहते हो, अपनी अपने व्रत को इतना स्वीकार करना चाहते हो, तो फिर मैं भी अपने व्रत में स्वीकार रहूंगा। जब तक आप जंगल में हैं मैं भी जंगल में रहूंगा, क्योंकि मैंने तो अपने पिता से कभी राज्य मांगा ही नहीं था और ना मैंने अपनी माँ को बोला था कि कोई ऐसा षड्यंत्र करो। तो मैं क्यों इस चक्कर में बीच में फंसूं? इसलिए मैं राज्य नहीं करूंगा। अगर दशरथ के एक पुत्र को जंगल में रहना ही है तो मैं जंगल में रहूंगा और आप जाके अयोध्या में राज्य करिए। जब भगवान राम ने इस प्रकार से सुना तो उन्होंने लक्ष्मण की तरफ देखा, क्योंकि कुछ ही देर पहले लक्ष्मण भरत के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो लक्ष्मण ने जब भगवान राम को इस प्रकार से देखा तो लक्ष्मण का सिर एकदम झुक गया और वो भरत की तरफ देख रहे थे, भरत की तरफ प्रशंसा की आंखों से देख रहे हैं। उसके बाद राम भरत की तरफ बताते हैं कि मैं यहाँ पे रह के भी क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला हूँ। मैं जंगल को राज्य करूंगा, यहाँ पे शांति की स्थापना करूंगा। और उसके बाद बताते हैं जहां तक दान की बात है, एक बार दान दे दिया गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जाता है। दशरथ का जो दान था वो क्लियर था, उसके बहुत सारे विटनेस थे। अभी हम उनकी मृत्यु के बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दशरथ की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि कोई भी रिप्लेस किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि भारत को जंगल में रहना चाहिए। तो इसलिए आप मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते उनकी जगह पे। उनका उनने जो ऑर्डर दिया उसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो वो अधर्म कहलाएगा। अभी सिटीजन्स भी समझ गए कि भगवान राम वापस नहीं जाएंगे। इसी के बीच में एक साधु आते हैं, जबली नाम से एक ऋषि आते हैं। और जबली हालांकि ऋषि हैं परंतु वो यहाँ पे एक नास्तिक व्यक्ति की तरह बात करते हैं। वो बोलते हैं कि राम इतना क्यों सोच रहे हो? जिसको जीवन मिला है उसको भोग करना चाहिए। क्या मृत्यु के बारे में सोच रहे हो, पिता के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारे सामने राज्य आया है तो तुम राज्य करो। भरत तो वैसे ही मूर्ख है, अगर तुम्हें राज्य दे रहा है तो तुम्हें राज्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने नास्तिकवाद की बात की तो भगवान रामचंद्र को बहुत गुस्सा आया। भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि आप मुझे अगर डुप्लीसिटी की बात करेंगे तो आपके हिसाब से मुझे दो दो स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे, क्योंकि व्यक्ति के बिहेवियर के पीछे जो इंटेंशन होता है वो वास्तविकता में उसकी स्ट्रेंथ होती है। जो महान लोग होते हैं वो वास्तविक बिहेवियर को समझते हैं। अगर मैं राज्य भोगने की इच्छा करूंगा तो मुझे बाहर से अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति दिखाना पड़ेगा और अंदर ही अंदर मैं भोग की इच्छा रखूंगा। तो मैं अच्छे से बाहर से व्यवहार अच्छे से करूंगा, परंतु अंदर से मैं खराब व्यवहार करूंगा। तो अगर कोई लीडर ऐसा डबल गेम खेलता है तो उसके फॉलोअर्स भी डबल गेम खेलेंगे, उसके फॉलोअर्स कैसे ट्रांसपेरेंट रहेंगे। और आप जो बता रहे हैं वो वैदिक शास्त्रों में नहीं लिखा है। वैदिक शास्त्र क्लियरली हमारे जो अनियंत्रित माइंड है उसको सुधारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं वैदिक शास्त्र झूठ है, वो लोग स्वयं ही झूठ के रास्ते पर जा रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान राम एकदम गुस्सा में आके जबली ऋषि जो थे उनको जवाब दिया, और साथ साथ उन्होंने बोला कि मुझे तो आश्चर्य है कि आप जैसा व्यक्ति हमारे पिता के कोर्ट में था कैसे। उन्होंने तुरंत वशिष्ठ से बोला कि इस ऋषि को निकाल दीजिए, ये मिनिस्टर थे एक्चुअली। तो राम ने बोला कि आपको अयोध्या की मिनिस्ट्री में रहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति को हम अयोध्या के मिनिस्ट्री में नहीं रखते। तो ऐसा सुन के जबली ऋषि भगवान के चरणों में गिर गए। फिर तो बोलते हैं कि नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ, परंतु जब मैंने देखा कि धर्म के रास्ते पर चलने के बाद भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा इस धर्म के रास्ते को छोड़ दे देना अच्छा है, इसलिए मैंने आपको अयोध्या वापस ले जाने के लिए ये सब बातें की। और फिर वशिष्ठ मुनि ने भी बताया कि जबली ऋषि एकदम नास्तिक नहीं है, उन्होंने आपके प्रेम के कारण उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया। अभी इसके बाद लास्ट ऑप्शन था, भरत दौड़ के जाते हैं वशिष्ठ मुनि के पास, उनसे बोलते हैं कि आप हमारे भी गुरु हैं, दशरथ के भी गुरु थे, तो आप अगर बोलेंगे तो राम स्वीकार कर सकते हैं। और दशरथ मुनि ने अभी बोलना प्रारंभ किया, दशरथ नहीं वशिष्ठ मुनि ने बोलना प्रारंभ किया कि जन्म से हर व्यक्ति के तीन गुरु होते हैं, माता पिता और आध्यात्मिक गुरु। एक पिता जीवन देते हैं परंतु आध्यात्मिक गुरु जीवन जीने का ज्ञान देते हैं, इसलिए आध्यात्मिक गुरु के निर्देश पिता के निर्देश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मैं केवल आपका गुरु नहीं हूं, आपके पिता का भी गुरु हूं, इसलिए मेरे निर्देशों को पालन करने से आपको धर्म अधर्म नहीं लगेगा, आप धर्म का पालन ही करेंगे अगर आप मेरे निर्देश पालन करेंगे। अगर अभी मैं आपको बोलता हूँ राज्य स्वीकार करने के लिए तो आप मेरे निर्देश का भी पालन करेंगे और इन हजारों लोगों के निर्देश का भी पालन करेंगे। तो मेरे निर्देश का पालन करने से आप इन सभी लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, मेरे निर्देश का पालन करने से आपकी माँ के प्रति भी आप उनके निर्देश का भी पालन करेंगे, और मेरे निर्देश का पालन करने से आपके भाइयों के प्रति भी आप कर्तव्य को पूरा करेंगे, तो इसलिए अभी आप हमारे साथ वापिस चलिए। तो वशिष्ठ ने जब इस प्रकार से बताया और भगवान रामचंद्र ने देखा कि जब आध्यात्मिक गुरु इतनी अथॉरिटी की तरह से बता रहे हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ के उनके चरण स्पर्श किए और फिर बताया कि गुरुदेव आपने जो बताया वो ठीक है, गुरु माता पिता के निर्देशों को पालन करना चाहिए, अपने जीवन को देके भी अगर पालन करें तो करना चाहिए, परंतु अगर कभी इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन उसी ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए जिस ऑर्डर में वो हमें दिए गए थे। तो सबसे पहले मैं अपने पिता के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा 14 साल तक, और 14 साल खत्म होने के बाद फिर मैं जब वापस आऊंगा तो आपके इंस्ट्रक्शन को पालन करके मैं फिर अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठूंगा, इसलिए मैं किसी के भी निर्देश को नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। अभी जब भरत ने ये सुना तो उनकी टॉलरेंस की लिमिट क्रॉस हो गई, तो भरत ने तुरंत सुमंत से बोला कि कुसा कुसा घास का आसन लेके आओ और मैं यहीं पे बैठ के प्रायोपवेश करूंगा। प्रायोपवेश का मतलब ध्यान करते करते बिना खाना पानी पिए अपने शरीर को त्याग देना। जब तक राम अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इस प्रकार से प्रायोपवेश करूंगा। और भरत ने जब देखा कि सुमंत नहीं लेके आ रहे हैं तो भरत खुद ही कुसा घास का आसन लेके आते हैं, परंतु भगवान रामचंद्र अभी थोड़े से नाराज होने लगे। वो बोलते हैं मैंने ऐसी क्या गलती की तुम्हें, तुम्हारे साथ ऐसा मैंने क्या गलत किया कि तुम ये कार्य कर रहे हो। प्रायोपवेश तो ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रियों के लिए नहीं है, और प्रायोपवेश ब्राह्मण तब करते हैं जब हेल्पलेस होते हैं, पर ये क्षत्रियों के लिए नहीं होता है, इसलिए अपने मिशन को भूल जाओ, अयोध्या वापस चले जाओ। और ये श्योर रहना चाहिए कि हो सकता चंद्रमा अपने लाइट को भूल जाए, हिमालय अपनी बर्फ को खत्म कर दे, और चाहे समुद्र का जल खत्म हो जाए, परंतु मैं अपने पिता के प्रॉमिस को कभी भी झूठ नहीं करूंगा। इस तरह से बोल के भगवान राम ने फाइनल डिसीजन सुनाया। और भरत अभी तक डर चुके थे क्योंकि अभी तक तो भगवान राम को गुस्सा नहीं आया था और भरत राम के गुस्से को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अभी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो लास्ट में जाके प्रजा से बोलते हैं, बाहर कुटिया के बाहर आके सबको जोर से बोलते हैं कि अभी आप लोग ही बताइए, लास्ट ऑप्शन है कि अगर आप अभी नहीं बोलेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि अयोध्या की इक्ष्वाकु वंश की डायनेस्टी का ये ट्रेडिशन है कि राजा प्रजा से पूछता है अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। हमारे राजा दशरथ ने आपसे पूछा नहीं इस प्रकार का डिसीजन लेने के पहले, इसी कारण से आपको इतना दुख हुआ। आप इतने उत्साह के साथ राम को वापस लेने के लिए आए थे, अगर अभी आप नहीं बोलेंगे तो हम हार जाएंगे, हमें ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ेगा, तो आप लोग कृपया करके कुछ बोलिए। और जब भरत ने इस प्रकार से बोला तो सबसे सीनियर जो व्यक्ति थे उन्होंने उठ के बोला कि हम जानते हैं राम को, और अभी हमने राम से सुन लिया है तो हम जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, और जो वो कर रहे हैं वो धर्म के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हो सकता है जो अच्छा हो वो हमेशा प्रसन्न करने वाला नहीं हो, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज अच्छी होती है उससे दुख भी मिलता है, परंतु अभी हम भी तैयार हैं कि अगर भगवान राम अपने पिता के आदेश को पालन करना चाहते हैं तो उनको आदेश का पालन करना चाहिए, हम उनको आगे परसुएट नहीं करेंगे। जब इस प्रकार से हुआ तो फाइनल डिसीजन हो गया, फिर राम भरत के पास तक आए और उनसे बोलते हैं कि भरत शांति से सोचो, और जो सिटीजन्स ने ये बोला है उसको भी ध्यान से सोचो, और ये एश्योर्ड रहो कि 14 साल बाद में वापस आके राज्य को स्वीकार करो। और जैसे ही भगवान रामचंद्र ने ये शब्द बोले, ऊपर से कुछ ऋषि मुनि आते हैं और भगवान राम और भरत के ऊपर फूलों की वर्षा होती है, और एक ऋषि उनमें से बोलते हैं कि भरत, अगर तुम्हें अपने पिता के लिए थोड़ा भी सम्मान है तो राम जो बोल रहे हैं उसको स्वीकार करो। इस तरह से बोल के वो सारे ऋषि गायब हो जाते हैं। अभी भरत को भी समझ में आ जाता है कि फाइनल क्या है, और भरत भी क्लियर हो जाते हैं, परंतु अभी वो डिस्टर्ब थे, इमोशनली डिस्टर्ब थे। तो वो एक दूत को बुलाते हैं, एक थाली में कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है, उसके ऊपर कपड़ा ढका होता है, उस कपड़े को हटाते हैं तो एक पादुका, चरण पादुका वहां पे होती है, और भरत उस तो चरण पादुका को राम के चरणों के पास में रख के बोलते हैं कि मुझे पता है कि अभी आप नहीं आएंगे, परंतु जब तक मैं सिंहासन पर बैठूंगा मुझे दुख होता रहेगा कि मैंने आपको चीट किया है, तो ये परिस्थिति कभी तभी सॉल्व हो सकती है जब मैं आपकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखूं, और ये चरण पादुका जब रहेंगे सिंहासन पे तो मुझे पता रहेगा कि मैं आपके रिप्रेजेंटेटिव के जैसा राज्य कर रहा हूँ, और सिटीजन्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि जहां भी आपके चरण चरण है वहां पे सिक्योरिटी हमेशा रहेगी। और अयोध्या के सभी लोग रोने लगे जब उन्होंने देखा भगवान रामचंद्र ने चरण पादुका पे अपने चरणों को रखा, और भरत ने फिर उसी चरण पादुका को अपने सिर पे रख के वापस जाते हुए शपथ लेते हैं कि अगले 14 साल तक मैं वनवासी वस्त्र में ही रहूंगा, हमेशा केवल जड़ और फल खाऊंगा, अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहूंगा और अयोध्या का राज्य करूंगा 14 साल तक आपके रिप्रेजेंटेटिव के जैसा, और अगर 14 साल खत्म होने के एक दिन बाद आप आए तो मैं अग्नि में कूद के अपना जान दे दूंगा। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न ने 3 बार भगवान राम को सरकमएम्बुलेट किया, परिक्रमा की, उसके बाद नीचे आने लगे। उनके जाने के बाद रामचंद्र जी ने सभी से मिलते हैं, और वो देखते हैं कि तीनों की तीनों रानियां जाने के लिए तैयार नहीं है, पालकी में बैठ के राम सीता की तरफ देख रहे हैं, तो इसलिए राम सीता लक्ष्मण इंटेंशनली कुटिया के अंदर चले जाते हैं जिससे कि सभी लोग वापस जा सके। जब नीचे भरत आते हैं, भरत उस फुटबियर को रॉयल एलिफेंट जो कि खाली आया था, दशरथ दशरथ का जो हाथी था उसके ऊपर चरण पादुका को रखते हैं और पूरे चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद, परिक्रमा करने का मतलब होता है कि उनका जो मन है उनकी चेतना अभी इस चित्रकूट पर्वत जो है उनके उनके लिए अयोध्या के समान है। वापस रुकते समय वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हैं, उनको सब कुछ सुनाते हैं, आगे जाके अयोध्या पहुंचते हैं। उस दिन सभी लोग खुशी भी थे और दुखी भी थे, सभी घरों में ये डिस्कशन हो रहा था कि दशरथ का वंश कितना महान है, और जितने लोग दुखी थे वो सारे के सारे दुख अभी आशाओं में बन गए थे, आशाओं में बदल गए थे, और अयोध्या के हर घर में उन्होंने राम के बाप कैलेंडर से चेक करके राम का डेट ऑफ रिटर्न लिख के रख लिया था, और अपने घर की दीवारों पर लिख के रख लिया था कि एक ऐसी खुशी है जो 14 साल बाद आने वाली है। और भरत के लिए ये 14 साल मैकेनिकल होने वाले थे क्योंकि भरत का शरीर हालांकि फंक्शन करता राम की सेवा में, परंतु उनका मन हमेशा समय के आगे भाग रहा था और वेट कर रहा था कि कब 14 साल कंप्लीट होंगे। इस बीच में एक बार जब भरत से पूछा गया कि वास्तविकता में अयोध्या में ये सब जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तो भरत ने क्या बोला, न मंथर्य न च मातरस्य दोषो न राजन न च राघवस्य मद पाप एव अत्र निमित्तम आसीत वन प्रवेश रघुनंदनस्य। रघुनंदन के वन प्रवेश करने में मंथरा की भी कोई गलती नहीं है, मेरी माँ की भी कोई गलती नहीं है, राजा दशरथ की भी कोई गलती नहीं है, भगवान राम की भी कोई गलती नहीं है, ये केवल मेरे पाप हैं जो मेरे पाप निमित्त बने हैं, जिसके कारण रघुनंदन को जंगल में प्रवेश करना पड़ा। और पहुंचने के अगले दिन ही भरत शत्रुघ्न अयोध्या छोड़ के नंदीग्राम चले जाते हैं। वहां पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और वहां पे राम की सैंडल को स्थापित करते हैं। 14 साल तक वहीं से भरत ने राज्य को स्थापित किया। और ऐसा बताते हैं लक्ष्मण बीच में बताते हैं कि 4 गुना राज्य बढ़ चुका है, परंतु 14 साल में जब भगवान रामचंद्र वापस आते हैं तो राज्य 10 गुना बढ़ चुका होता है। राज्य का जो टैक्स कलेक्शन है 10 गुना तक बढ़ चुका होता है भरत के राज्य के अंडर में। तो वास्तविकता में राम राज्य जो है वो राम ने नहीं स्थापित किया, राम राज्य भरत ने स्थापित किया था। 14 साल का जो भरत का राज्य था उसके कारण राम राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ पे सेक्शन एंड होता है। इसके बाद अगला डिस्क्रिप्शन आएगा कि रामचंद्र सीता और लक्ष्मण चित्रकूट छोड़ के आगे जाते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि अयोध्या में तो शायद सबको रास्ता याद हो गया होगा, हो सकता है उन लोगों ने मैप भी बना के रख लिए हो हर घर में। और राम को ऐसा लगता था कि अभी ऐसा होगा कि हर दिन ही अयोध्या से कोई ना कोई आ जाएगा, कभी कोई ये सामान लेके आएगा, कोई खाने का सामान लेके आएगा। और अयोध्या ज्यादा दूर भी नहीं थी चित्रकूट से, इसलिए राम को ऐसा लगा कि अभी यहाँ रहना सेफ नहीं है, अभी हमें आगे चलना चाहिए। तो कुछ समय बाद वो लोग चित्रकूट छोड़ के दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद से फिर अरण्य कांड प्रारंभ होता है। अरण्य कांड के आगे का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। ओके, आई होप 1 घंटे में हम कंप्लीट कर पाए। मैंने कुछ कुछ चीजें मिस की हैं, बट एनीवे कंप्लीट करना आवश्यक था। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अच्छा, शिवम तो वो 9:758 हो चुका है ऑलरेडी। इस मीटिंग को ऑन रहने दीजिएगा, जो ज्वाइन करेंगे तो इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है?
हरे कृष्ण, यस
आवाज आ रही?
प्रभु। तो मैं ये पूछा था, ये दंड कारण कहाँ पे है?
दंडकारण्य कहाँ पे है? पता नहीं मॉडर्न में
मैंने
क्या
सुना था कि
बना।
जैसे 11-12 साल राम जी वहां चित्रकूट में रहते हैं, ऐसा सुना था मैंने।
बाद 1 साल दंडकारण्य में रहते हैं। एक्चुअली 10-1 और 3, 10-3 और 1, 10 साल चित्रकूट में रहते हैं, 3 साल दंडकारण्य में और 1 साल लंका में। सीता का डिस्क्रिप्शन ऐसा आता है, 10, 3 एंड 1। उसमें से भी 1 और 2 साल दंडकारण्य में, कुछ कुछ अलग जगह है। दंडकारण्य एक्चुअली एक एक राजा थे, राजा दंड, उनका वो राज्य था और शुक्राचार्य ने उसको श्राप दिया था, जिसके कारण से वो राज्य भस्म हो गया था और वहां पे जंगल आ गया था, इसलिए उसका नाम है दंडकारण्य। वास्तविकता में वो जो राजा थे वो अयोध्या के ही राजा थे, इक्ष्वाकु के पुत्र थे। उनको राज्य से निकाल दिया था इक्ष्वाकु ने, तो उन्होंने वहां पे जाके शासन स्थापित किया था। अभी प्रेजेंट भारत में दंडकारण्य कहाँ पे आता है एग्जैक्टली मुझे नहीं अंदाजा है कहाँ पे होगा। ओके,
हाय कृष्ण प्रभु, मेरे 3 प्रश्न
कौन है तू? तो शिवानंद प्रभु। ओके यस
हैं।
यस,
मैं पहला प्रश्न था कि जैसे दशरथ जी का अपने पुत्र को अंतिम समय में जैसे याद करते हैं, अब प्रभु जी लाइक हम इस समय देखते हैं तो हर किसी के माता पिता का अपने पुत्र के प्रति एक प्रकार का प्रेम होता है। लाइक अंतिम समय में सभी चाहते हैं कि हमारे पुत्र हमारे सामने रहे, ठीक है। तो दशरथ का भी जो भाव था अंतिम समय में राम के प्रति, वो एक पुत्र के मोह के जैसा था। तो क्या इस तो फिर इसको क्या स्पिरिचुअल कैसे समझा जाए, क्योंकि तो भले वो भगवान, अब सीधी सी बात, अगर किसी का पुत्र भगवान हो तो एक तो पुत्रवत मोह के आड़ में वही भगवान का प्रेम गिना जाएगा, क्योंकि भगवान है स्वयं। तो फिर इसको स्पिरिचुअली समझा जाए या फिर मटेरियली अटैचमेंट के, हाँ पुत्र प्रति एक मोह है, तो ऐसे समझा जाए?
नहीं, ऐसे केसेस में मटेरियल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि दशरथ जो है वो खुद भगवान के एटर्नल एसोसिएट है, तो उनका जो प्रेम है वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल प्रेम। देखने में मटेरियल जैसा लग सकता है परंतु है वो स्पिरिचुअल। ओके
दूसरा प्रश्न ब्रो ये था मेरा कि जैसे आपने बताया कि जो 14 पाप जो बताया कि आपने, उसमें से लास्ट सेकंड पाप बताया कि लाइक राम जैसा बता रहे थे कि तुम ये जो कुछ हुआ ये विधाता ने किया, भाग्य ने इस प्रकार से किया, इनकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे तो ब्रो इस भौतिक संसार में भी सब भाग्य ने किया होगा, ऐसा हर कोई आर्गुमेंट कर सकता है कि राम जी को जैसे बोल रहे हैं कि भाग्य ने इसका सब कुछ किया हुआ, हमने थोड़ी कुछ किया, जो लिखा हुआ वही हुआ। तो तो फिर उसको कैसे समझा जाए?
मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हैं।
आपने कुछ बताया था ना 14 बाब में से कि मतलब कुछ आपने ऐसा बताया था एक सेंटेंस कि जैसे ये जो कुछ हुआ ये तो भाग्य का लिखा हुआ था, इसमें कई कई का कोई दोस्त नहीं था, नंबर था का कोई दोस्त था, जो कुछ हुआ जिससे विधाता ने अरेंज किया था उसी हिसाब से हुआ, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो ऐसे तो प्रूफ तो फिर भी हम देखते हैं कि कई कई ने वो खुद की उनकी लाइक भौतिक इच्छा को पूरा करने की वजह से ये सब चीजें हुई। तो ऐसे इस भौतिक संसार में तो हर कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि लाइक हम तो पाप कर नहीं रहे हैं, तो विधाता ने ऐसा लिखा है हमारे साथ कि इस वजह से हम कर रहे हैं ऐसा वैसा। तो
नहीं पर ये देखना होगा कि ये चीज कैकई ने नहीं बोली, अगर कैकई ने बोली होती तब गलत माना जाता, भगवान राम ने जो बोला है तो सही बोला है, क्योंकि वास्तविकता में तो जो न्याय अन्याय है वो उसी उसका डेफिनेशन यही होता है कि भगवान ही उसको अरेंज करते हैं, कर्म का जो चक्र है वो हमें मिलता है। परंतु कैकई अगर उसको बोलती तो वो गलत होता। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं ना दत्ते कस्यचित पापं, चौथे अध्याय में आता है, नहीं पांचवें अध्याय में, न चाहिए वो सुकृतम विभु, कि मैं किसी के पाप और पुण्य को स्वीकार नहीं करता ना तो मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ। तो ऑब्वियसली अन्याय तो कभी नहीं होता है, वो एक्चुअली कर्म को जब हम नहीं जानते तो अन्याय जैसा लगता है। भगवान रामचंद्र ने जो बोला ठीक था, जिसको ऐसा दुख हुआ है वो तो ऐसा बोल सकता है तभी उसको शांति मिलेगी, परंतु जिसने दुख दिया है वो ऐसा बोलेगा तो उसको एक्सप्लॉइटेशन बोला जाता है। जैसे कंस ने 6 बच्चों को मारा, उसके बाद आके वो क्या बोलता है कि एक्चुअली मैंने नहीं मारा ये तो डेस्टिनी ने मारा, तो ये एक पाप है, पहले पाप करो फिर डेस्टिनी बोलो, ये गलत कहलाता है। तो वो पर्सपेक्टिव दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके
और एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे वशिष्ठ ऋषि ने उनको आदेश दिया था उस समय, एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ बस एक लास्ट क्वेश्चन, कि वशिष्ठ ऋषि ने जैसे उनको आदेश दिया था कि आपको जो है अभी मतलब राज्यभार संभाल लेना है,
हाँ।
तो वशिष्ठ ऋषि का तो मूड था कि उसी समय ज्वाइन करे, ठीक है, लाइक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर थे, अगर उन्होंने कुछ कहा तो फिर राम जी ने ऐसा क्यों, मतलब ठीक उनके आर्गुमेंट तो पूरे सही थे, भगवान ने जो बताया वो पूरी चीज सही है, बट ऐसा क्यों कि फिर इसमें ऐसा लगता नहीं कि स्पिरिचुअल मास्टर ने जो कहा फिर उनको उन्होंने अपने इच्छा से लाइक बोले कि हाँ 14 साल बाद में इसको कर दूंगा, आपने जो कहा इसको भी पूरा करूंगा।
बोला वैदिक शास्त्रों से ही बोला कि अगर इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहे हैं तो जिस ऑर्डर में मिले हैं उस ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो चीज वैलिड थी। अगर दशरथ की मृत्यु नहीं हुई होती तो फिर ऐसा हो सकता था, क्योंकि वशिष्ठ दशरथ को आदेश देते हैं और फिर दशरथ उस आदेश को चेंज कर सकते थे। भगवान रामचंद्र ने यही बोला ना कि अभी पिता तो जा चुके हैं तो उनके ऑर्डर्स को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, वो भगवान ने बोला। और अल्टीमेटली उसके पीछे था कि भगवान को रावण का विनाश करना था, अगर नहीं जाते उनकी बात मान लेते तो रावण का विनाश नहीं हो पाता।
ओके थैंक यू,
ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार एक्चुअली